ओम शांति। इस सत्र का विषय तो आपको बताया गया है, तनाव मुक्त सुखद स्वस्थ जीवन शैली हम कैसे जिए। तो आप यहाँ पिछले दो दिनों से शांति वन में निवास कर रहे हैं और मैं समझती हूँ कि इस समय तो आप सभी तनाव मुक्त होंगे, हैं? किसी को तनाव है अभी? लेकिन अगर हम वर्तमान विश्व पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि तनाव आज एक विश्वव्यापी समस्या बन चुका है और स्थिति ये है कि तनाव से हो गई है दोस्ती इस कदर, तनाव होता है तनाव के न होने पर। आज हमें तनाव तब होता है, हमें लगता है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं। बच्चों को भी आज तनाव होता है, जिसे खेलने और मौज करने की उम्र माना गया उसमें भी तनाव प्रवेश कर गया है। हमारे यहाँ अनेक विंग्स हैं, ऐसे ही एक मेडिकल विंग है जो लोगों को स्वास्थ्य की शिक्षा देने के लिए अनेक कार्यक्रम करते हैं। तो ऐसे ही एक शहर में स्वास्थ्य मेला लगाया गया था और उसमें एक माता पिता अपने बच्चे के साथ वो मेला देख रहे थे। तो उसमें एक स्टॉल था जहाँ ये कहा गया कि आप अपनी किसी बुराई का दान करें। कहने का भाव ये था कि अगर कोई गुटखा खाता है, शराब पीता है या सिगरेट पीता है, ऐसी कोई बुराई है तो वो बुराई को वहाँ दान करें तो उनके व्यसन छूट जाएंगे। तो माता पिता को ये बात अच्छी लगी और माँ ने बेटे को कहा कि बेटा तुम चॉकलेट बहुत खाते हो, तुम्हारे दांत में कीड़े लगे हैं, तुम यहाँ अपनी चॉकलेट दान कर दो। तो वो बेटे ने कहा कि माँ मुझे सोचने दो, मुझे क्या दान करना है। और फिर एक मिनट सोच के बोलता है, मैं अपनी पढ़ाई दान कर दूं, मुझे पढ़ाई से बहुत टेंशन होती है। तो आज हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी इतना कंपटीशन है कि बच्चे के एडमिशन से लेकर के कैरियर के हर कदम पर उसे उस प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। कई बार ये देखने में आता है कि बच्चों के एग्जाम्स चल रहे होते हैं तो लगता है कि माँ बाप के भी एग्जाम्स चल रहे हैं। बच्चों से ज्यादा माता पिता जो हैं वो टेंशन में होते हैं, और टेंशन पास होने की नहीं होती है, टेंशन होती है कि 99% आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसीलिए कहा कि ये 21वीं सदी तनाव की सदी है और उसके कारण लोग पैनिक और डिप्रेशन में जा रहे हैं। भारत में ही करोड़ों लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन की दवाइयां खाते हैं। तो इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि हम शांति का जीवन जिए, सुख का जीवन जिए, तो हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना होगा। साइंटिस्ट हेंसले हुए, जिन्होंने 20वीं सदी में तनाव पर काफी अध्ययन किया और उन्होंने तनाव को परिभाषित किया कि तनाव हमें तब होता है जब प्रेशर्स ज्यादा हैं और कोपिंग एबिलिटी कम है। ये एक प्रकार का दर्द है जो मनुष्य को ये बताता है कि मुझे कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है। और यदि हम परिवर्तन लाना चाहते हैं तो जरूर हमें कुछ नया सीखना होगा, तभी हम वो परिवर्तन ला सकते हैं। प्रेशर्स चारों तरफ से आते हैं, भूतकाल में जीवन में कुछ घटनाएं घटती हैं जिसको लेकर के हम बहुत चिंतित रहते हैं, ऐसा हुआ, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बात बहुत छोटी होती है और हम उस छोटी बात को सोच सोच कर बड़ा बनाते हैं, राई को पहाड़ बना देते हैं और उसका तनाव अनुभव करते हैं। ऐसे ही भविष्य की चिंता मनुष्य को लगी रहती है, बच्चों की चिंता जैसे बताया, उनकी पढ़ाई की चिंता, उनकी भविष्य की चिंता, उनकी शादी की चिंता, स्वयं के भविष्य की चिंता, कोई बीमारी हो गई तो उसकी चिंता, कोई ना कोई भविष्य की चिंताएं, अपने नौकरी धंधे की चिंता, तो वर्तमान में उसका तनाव अनुभव करते हैं और वर्तमान की अपनी समस्याएं होती हैं। और जब हम तनाव में होते हैं तब हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स बनते हैं, हमारा शरीर उसको रिस्पॉन्ड करता है, और जो केमिकल्स बनते हैं वो स्लो पॉइजन का काम करते हैं और धीरे धीरे शरीर में अनेक बीमारियां पैदा होने लगती हैं जिन्हें साइकोसोमैटिक डिजीजेस कहते हैं। येल यूनिवर्सिटी एक अमेरिका में है जहां विद्यार्थियों के ऊपर एक प्रयोग किया गया। उनको उनके स्वभाव के अनुसार दो ग्रुप में बांटा गया। पहले ग्रुप में उन स्टूडेंट को लिया गया जो बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते थे, यानी जल्दी गुस्सा करते थे, धैर्य नहीं रख सकते थे, अपने मन को स्थिर नहीं रख पाते थे। और दूसरे ग्रुप में उन स्टूडेंट्स को लिया गया जो इसके विपरीत स्वभाव के थे, शांत स्वभाव के थे, धैर्यवान थे, मन को स्थिर रख पाते थे, और उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। तो ये देखा गया कि उस समय दोनों ही ग्रुप के विद्यार्थियों का स्वास्थ्य सामान्य था, लेकिन क्योंकि एक स्टडी थी तो हर 10 साल में उन्हें स्वास्थ्य की जांच के लिए बुलाया जाता था। तो ये देखा गया कि 50 वर्ष की उम्र तक आते आते जो पहला ग्रुप था, यानी जो जल्दी तनाव में आ जाने वाले थे, उनमें बीमारियां दूसरे ग्रुप की तुलना में 5 गुना ज्यादा हो गई थी। यानी उनमें किसी को ब्लड प्रेशर था, किसी को डायबिटीज थी, किसी को हार्ट की बीमारी थी, और इसीलिए उनके मृत्यु की संभावना भी दूसरे ग्रुप की तुलना में ज्यादा थी। तो यही कारण है कि हमें अपने तनाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि तनाव के कारण ये मनोकायिक रोग हमें होते हैं। इससे हमारे दिल की धड़कन बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और अगर कोरोनरी ब्लॉकेजेस हैं जो आज की जीवन शैली में बहुत कम आयु में ही होने लगते हैं, तो तनाव की स्थिति में जो एड्रेनलिन बनता है उससे धमनियां सिकुड़ जाती हैं और हृदय को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, और इसीलिए हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसकी वजह से एसिडिटी बढ़ती है, उसके कारण अल्सर्स हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया होता है, सिर में दर्द होना, नींद नहीं आना, थकान बने रहना, मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से मस्तिष्क की कार्य क्षमता प्रभावित होती है, हमारी एकाग्रता की शक्ति कम होती है, स्मरण शक्ति कम होती है, हम बहुत जल्दी भूलने लगते हैं कोई भी चीजों को, और यदि लंबे समय तक वो रहता है तो डिप्रेशन में जा सकते हैं, जो न्यूरोटिक डिजीज है। लोग अपने तनाव को कम करने के लिए व्यसन लेते हैं, लेकिन वो व्यसनों से और ही हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। डायबिटीज, आर्थराइटिस, ये भी साइकोसोमैटिक डिजीजेस हैं। तनाव की स्थिति में हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और उसके कारण इन्फेक्शंस, जो भी वायुमंडल में वायरस बैक्टीरिया फैले होते हैं, सामान्यतः वो हमें रोग उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि हमारी रोगों से लड़ने की एक शक्ति होती है, लेकिन यदि हम बहुत तनाव में रहते हैं तो फिर वो वायरस हमारे शरीर में रोग पैदा करने लगते हैं। मानो स्वाइन फ्लू फैला, तो सभी को स्वाइन फ्लू नहीं होगा, किसी किसी को हो जाएगा, तो जिसकी रेजिस्टेंस पावर कम होगी उसको वो बीमारी लग जाती है। हम सभी अपने जीवन में तनाव के अनुभवी हैं। आप में से कोई ऐसे कहेगा, जिंदगी में कभी ना मुझे तनाव हुआ है, ना है ना होगा, कोई कह सकता है? नहीं। तो हम सभी तनाव के अनुभवी हैं, तो पहले हम आपसे थोड़ा शेयर करना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी समस्याएं परिस्थितियां आती हैं जब आप तनाव महसूस करने लगते हैं, चाहे वो आपके फैमिली लाइफ की हैं, चाहे वो आपके कार्यस्थल की हैं, चाहे वो आपके अपने व्यक्तित्व की कोई समस्या है। कोई शेयर कर सकते हैं? कोई भी बोलें, बोलिए। हम काम करते हैं लेकिन उसके परिणाम उतने अच्छे नहीं मिलते हैं, टाइम पर प्रमोशन नहीं मिलता है। सही बात है। और कोई शेयर करेंगे? जो पीछे से बोलेंगे वो जोर से बोलेंगे तब सुनाई देगा। कम समय में ज्यादा काम करना पड़ता है, बिल्कुल, वर्क ओवरलोड। और जब कोई मनोकामना पूरी नहीं होती, आगे वाले जो सुन रहे हैं वो पास कर दें, क्या बोला है आपने? जब मन मुताबिक काम नहीं हो, लगभग वही मतलब है। और आप अपने सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए जो कर रहे हैं उसके परिणाम बहुत नेगेटिव आए हैं। और सब वर्क प्रेशर वाले हैं यहाँ पर, हाँ, फैमिली लाइफ की प्रॉब्लम, एग्जाम का प्रेशर, स्टूडेंट्स को एग्जाम्स का प्रेशर होता है। मानवीय मूल्यों की कमी हो गई है, सबसे बड़ा कारण तो यही है। बिल्कुल। तो इसके ऊपर भी एक स्टडी की गई, हाँ, आप सभी अच्छे अच्छे अनुभव सुनाए। अच्छा, एक दो और सुना सकते हैं आप, बोलिए जी। फैमिली में भी क्या प्रॉब्लम? नोटबंदी हो गई, किसी ने कहा, हाँ, वो भी टेंशन का बड़ा कारण है। हाँ जी, बोलिए। नहीं समझ में आया, पास ऑन करिए, उन्होंने क्या बोला है। हमारी इच्छाएं बढ़ गई हैं, बिल्कुल, ये भी एक कारण है, इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो। अच्छा, अच्छे दिन कब आएंगे? वो तो प्रधानमंत्री मोदी जी का वादा है, हाँ, वो अच्छे दिन लेकर के आएंगे। लेकिन जो ऑल माइटी गवर्नमेंट है, ऑल माइटी गवर्नमेंट माना भगवान की जो गवर्नमेंट है, उनका भी वादा है कि सतयुग आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे जो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं उसके ऊपर भी एक स्टडी की गई, और होम्स एंड राहे ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिन्होंने अध्ययन किया कि जो घटनाएं हमारे जीवन में परिवर्तन लाती हैं वो तनाव पैदा करती हैं। फिर वो परिवार की कुछ समस्याएं, चाहे वो कार्यस्थल की हैं, फैमिली लाइफ में अगर किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो गई, खासकर अगर जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है, तो वो बहुत तनावपूर्ण होता है। डाइवोर्स एंड सेपरेशन, अगर पति पत्नी में अहम का टकराव होता है, दोनों साथ नहीं रह सकते, अलग रहने लगते हैं, और स्थिति अगर तलाक तक पहुंच जाती है, क्योंकि आज के समय में तलाक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे तो हर एक व्यक्ति तलाक से गुजरता है, लेकिन भारत में भी तलाक के केसेस आज परसेंटेज बढ़ती जा रही है, और जब तलाक होता है तो दो परिवार तनाव से गुजरते हैं। ऐसे ही शादी खुशी का अवसर माना जाता है, लेकिन उसमें भी तनाव होता है। ये इस तरह से है, हम एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे आपको कि एक बार एक बिजनेसमैन, उन्होंने लॉटरी का टिकट खरीदा, तो वो 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट था जो उनके जमाने में बहुत बड़ी रकम थी, और भाग्य से उनकी वो लॉटरी खुल गई। लेकिन उन्होंने फोन नंबर अपनी पत्नी का दिया था, तो पत्नी को सूचना मिली कि लॉटरी खुली है। पत्नी ने सोचा कि पति हार्ट पेशेंट हैं और इतनी बड़ी खबर की सूचना अगर उनको मिलेगी तो कहीं कुछ असर ना हो जाए, तो उसने पहले अपने डॉक्टर से बात की। तो डॉक्टर ने कहा, आप उनको मेरे पास भेज दीजिए, मैं समझा दूंगा। तो जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने पहले समाचार की बात की, फिर कुछ हेल्थ के बारे में पूछा और फिर कहा, अगर आपको 10 लाख की लॉटरी निकले तो आप क्या करोगे? कहा डॉक्टर, अगर 10 लाख मिलेंगे तो मैं एक कार ले लूंगा, मुझे कार की जरूरत है। फिर डॉक्टर ने कहा, अच्छा अगर आपको 50 लाख की लॉटरी निकले तो क्या करोगे? कहा 50 लाख, अगर 50 लाख मिलेंगे तो मुझे घर चाहिए, मैं घर ले लूंगा। फिर डॉक्टर ने कहा, अच्छा आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है? तो कहा डॉक्टर, क्यों मजाक करते हैं, जरूर मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा है, लेकिन मैं इतना भाग्यवान नहीं हूं कि 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाएगी। तो डॉक्टर ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, क्या करोगे? तो कहा डॉक्टर, अगर ये सच है तो फिर मैं 50 लाख आपको दे दूंगा। तो डॉक्टर को हार्ट अटैक हो गया। तो यहां भी ऐसे होता है कि जो माता पिता हैं, जिन्हें अपने बच्चों की शादी करनी होती है, उनको कई प्रबंध करने होते हैं, उसमें धन की समस्या हो सकती है, ससुराल पक्ष वालों के व्यवहार की समस्या हो सकती है, जिनकी शादी होती है उनके लिए नया वातावरण, नई परिस्थितियां, नए लोग, उनके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, और इस तरह से खुशी के साथ साथ तनाव भी होता है। धन की समस्या, हाँ ये भी आज मनुष्य के जीवन की बड़ी समस्या है, क्योंकि धन को हम शक्ति मानते हैं, आज हम धन को सब कुछ मानते हैं। विज्ञान ने इतने सुख सुविधा के साधन हमें दिए हैं, तो हम सब चाहते हैं कि वो सब हमारे पास हो, और उसके लिए धन चाहिए। अगर है तो ठीक, और नहीं है तो कई बार मनुष्य गलत तरीके अपना करके भी धन कमाते हैं। आज की जिंदगी भाग दौड़ की जिंदगी है, तो हम किसके पीछे भाग रहे हैं? धन कमाने के पीछे। कम से कम समय में अधिक से अधिक धन हम कमाएं। हाँ, अब शायद थोड़ा सा अंतर आ जाए, जब से नोटबंदी हुई है तब से थोड़ा समझ में आ गया है कि बहुत कमाने से भी फायदा नहीं है, गवर्नमेंट ले जाने वाली है। हाँ, नहीं तो गलत तरीके से भी धन कमाते हैं। और पहले कहते थे, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। अब उल्टा है, अब कहते हैं धन गया तो सब कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो कुछ नहीं गया। तो मनुष्य धन कमाने के लिए अपने चरित्र की भी परवाह नहीं करते हैं, यहां तक कि संबंधों की भी परवाह नहीं करते हैं। अगर धन संपत्ति के बंटवारे में थोड़ा कम ज्यादा हो जाए तो बच्चे या कहें भाई भाई के दुश्मन हो जाते हैं, बेटे माता पिता के दुश्मन हो जाते हैं, घरों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, ऐसे समाचार आए दिन समाचार पत्रों में होते हैं। लेकिन धन को हम जितना महत्व देते हैं, उतना धन सब कुछ है नहीं। धन हमारे जीवन की आवश्यकता है जरूर, पर धन से आप किताबें खरीद के ला सकते हैं, ज्ञान नहीं खरीद सकते हैं। धन से आप घड़ी खरीद के ला सकते हैं, समय नहीं खरीद सकते। आप दवाइयां खरीद के ला सकते हैं, स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। आप बिस्तर खरीद के ला सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। तो उसकी अपनी सीमा है, और इसीलिए सच्चाई ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही जीवन में सुख शांति लाता है। बच्चों की समस्या होती है परिवार में, जैसे अभी हमने बात की, माता पिता सोचते हैं बच्चे आज्ञाकारी हों, हमारी अपेक्षाएं पूरी करने वाले हों, लेकिन अगर वो आज्ञाकारी नहीं है, गलत संघ में पड़ जाते हैं। आजकल गलत संघ में पड़ना बहुत आसान है, सोशल मीडिया इतना पावरफुल है। हाँ, बच्चे पढ़ाई नहीं करते लेकिन उसमें अपना अधिक समय व्यतीत करते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में आप सोचते हैं वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या ऐसा ही कोई ऊंचा कैरियर बनाए, लेकिन अगर वो आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ ये देखने की जरूरत है कि बच्चे किस योग्य हैं। कई बार वो योग्य होते हैं तो जो आप अपेक्षा रखते हैं उन अपेक्षाओं को वो पूरा करते हैं, लेकिन यदि उनकी रुचि ही नहीं है और वो योग्य ही नहीं है तो फिर बच्चों पर दबाव पड़ता है और इसीलिए वो गलत रास्ते चुनने लगते हैं। जब भी एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं हमेशा कुछ बच्चे सुसाइड करते हैं। यहाँ पर राजस्थान में कोटा एक शहर है जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं और हर साल वहाँ के समाचार होते हैं कि कुछ ना कुछ बच्चे सुसाइड करते हैं। तो ऐसे ही एक बच्चे ने सुसाइड किया और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मेरे पिता चाहते हैं मैं इंजीनियर बनूं लेकिन मैं तो अभी एग्जाम में फेल हो गया हूँ और मुझे पता है कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूं लेकिन मैं इंजीनियर नहीं बन सकता और इसीलिए मैं ये कदम उठा रहा हूं क्योंकि मैं अपने माता पिता को निराश नहीं करना चाहता। तो हमेशा बच्चों को पहले देखिए और उस अनुसार ही उनका मार्गदर्शन करें, उस अनुसार ही उन्हें अपने जीवन में प्रोत्साहित करें। और बच्चों को यदि आप चाहते हैं कि वो गलत रास्तों पर ना जाएं तो उन्हें समय दीजिए, बचपन से ही उन्हें अच्छे संस्कार दें। उनके विश्वास को यदि आप जीतते हैं तो फिर बच्चे आपके कहे अनुसार चलते हैं और कार्य करते हैं। ऐसे ही कार्य क्षेत्र पर भी हम काफी समय व्यतीत करते हैं, लगभग 8 घंटे का समय मनुष्य कार्य क्षेत्र पर बिताता है और वहां भी काफी समस्याएं आती हैं जो आप सभी शेयर कर रहे थे। बीइंग फायर्ड, आपके बॉस हैं, अधिकारी हैं, कोई ना कोई अधिकारी तो होते ही हैं और यदि वो अधिकारी कठोर स्वभाव के हैं, आप बहुत अधिक मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, आपके कार्य की प्रशंसा तो नहीं होती है लेकिन थोड़ी सी भी गलती होती है तो उसके लिए आपको अपमानित कर दिया जाता है। ऐसे ही कार्यस्थल पर साथियों के बीच में कंपटीशन होता है। अगर ये कंपटीशन हेल्दी है तो इससे हमारी उन्नति होती है, लेकिन अनहेल्दी कंपटीशन जो ईर्ष्या द्वेष पर आधारित होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है और ऐसे कंपटीशन को छोड़ देना चाहिए। साथियों के बीच मतभेद हो जाते हैं, कई बार जिनके साथ हम कार्य करते हैं उनसे हमारे विचार नहीं मिलते, कार्य हमको उनके साथ ही करना होता है, उनका सहयोग भी हमें चाहिए होता है लेकिन ऐसी स्थिति में हमें सहयोग नहीं मिलता है और फिर हमारे लिए तनाव पैदा होने लगता है। कई बार प्रमोशन की बजाय डिमोशन हो जाता है, डिमोशन अर्थात पद कम कर दिया जाता है क्योंकि हमारा कोई पिछला रिकॉर्ड होता है या कोई ऐसी गलती होती है जिसके कारण हमारा प्रमोशन या तो रोक लिया जाता है या कई बार पद से सस्पेंड भी कर देते हैं, कुछ समय के लिए पद से हटा देते हैं। तो ये व्यक्ति के लिए बहुत तनावपूर्ण होता है क्योंकि लॉस ऑफ स्टेटस इज मोर स्ट्रेसफुल देन लॉस ऑफ मनी एंड कम्फर्ट्स, क्योंकि व्यक्ति की उसमें बदनामी होती है और इसीलिए डिमोशन जो है वो ज्यादा तनावपूर्ण होता है। एक्सेसिव वर्कलोड, बहुत अधिक काम, आपने भी शेयर किया कि यदि हम कार्य बहुत अधिक करते हैं कम समय में हमें ज्यादा काम करना पड़ता है, आजकल तो डेडलाइंस होती हैं कार्य के लिए तो हम अपने आप को समय नहीं दे पाते, अपने परिवार को समय नहीं दे पाते, तनाव होता है। नॉइजी एनवायरमेंट, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती हैं, कहीं कहीं बहुत मशीनों का शोर, ट्रैफिक होता है, पोल्यूशन होता है, ये भी तनाव पैदा करता है। ओवर क्वालिफाइड, बहुत पढ़ लिख जाते हैं लेकिन जैसा जॉब चाहते हैं वैसा जॉब नहीं मिलता, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होता, तो ये सब कारण हैं जो वर्क प्लेस पर हमें तनाव पैदा करते हैं। तो ये देखा गया 40% एम्प्लॉयज को काफी तनाव था कार्य क्षेत्र में, और जब उनके इस तनाव को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए गए तो उनके कंपनसेशन क्लेम में 70% तक कमी आई। ये विदेशों में एक अध्ययन किया गया, तो ये देखा गया कि यदि उनके तनाव को दूर करने के प्रयास किए गए तो वो कंपनसेशन क्लेम काफी कम लेने लगे। तनाव के बारे में कुछ भ्रामक धारणाएं हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जीवन में यदि हम सफल होना चाहते हैं, यदि हम बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, तो बिना तनाव के संभव नहीं है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, यस और नो? जो समझते हैं यस वो हाथ उठाइए। अच्छा, और जो समझते हैं नहीं, हाँ वो हाथ उठाइए। अच्छा, लगभग बराबर है और बाकी सब न्यूट्रल है, ऐसा कहेंगे। तो वास्तव में ज्यादातर लोग ये धारणा रखते हैं कि जीवन में यदि हम बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो तनाव तो होता ही है, बिना तनाव के कार्य करना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ हम ग्राफ में देख रहे हैं कि जब हम तनाव में कार्य करते हैं तब हमारे शरीर में शुरू में कैटाकोलामिन्स बनते हैं और वो हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। हमें ऐसा लगता है हमारी कार्य क्षमता बढ़ गई है, लेकिन थोड़े समय बाद ही शरीर में कॉर्टिसोल बनने लगता है जो हमें थकाता है और हमारी कार्य क्षमता कम होने लगती है। तो एक थोड़े समय का सिर्फ भ्रम हमें मिलता है कि हाँ हमारी कार्य क्षमता बढ़ रही है। तो कई बार देखने में आता है लोग तनाव में काम करते हैं, 35-40 साल की उम्र तक आते आते जो पद पाना चाहते हैं वो पद प्राप्त कर लेते हैं, जितना धन कमाना चाहते हैं वो धन भी कमाते हैं, लेकिन अब स्वास्थ्य की जांच कराने जाते हैं तो पता चलता है या तो हार्ट की बीमारी शुरू हो गई, नहीं तो ब्लड प्रेशर शुरू हो गया, नहीं तो डायबिटीज शुरू हो गई, कोई ना कोई साइकोसोमैटिक डिजीज शुरू हो जाता है। अब आपने 35-40 साल तो कमा लिया, जितने साल और जीने वाले हैं क्या करेंगे, क्योंकि ये सब बीमारियां ऐसी हैं जो कंट्रोलेबल हैं, क्योरेबल नहीं है। एक बार बीमारी आ गई शरीर में, जीवन भर उसके साथ जीना पड़ता है, तो आप खर्च करते रहते हैं स्वस्थ रहने के लिए। ऐसे ही एक सीईओ थे, यंग एज में 35 इयर्स की एज में मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ बन गए। बहुत तनाव में कार्य करने की आदत थी, असफलता तो जीवन में कभी अनुभव ही नहीं की, कई देशों के दौरे पर रहना पड़ता था। तो एक बार ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे और उनको ये ख्याल भी नहीं था कि बहुत टेंशन में काम करने के कारण मेरे हार्ट पर उसका असर आया है। तो वहां पर कंपनी को लॉस हो गया और वो लॉस के कारण वो इतना स्ट्रेस में आ गए कि उसका असर सीधा उनके ऊपर आया, हार्ट अटैक हुआ, और इतना मैसिव हार्ट अटैक था कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। अब वो 35 साल की बजाय अगर 45 साल में सीईओ बनते तो शायद अपने परिवार समाज को ज्यादा दे सकते थे। तो कई बार हम अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं करते हैं और हमेशा तनाव में कार्य करते रहते हैं और उसके दुष्परिणाम कई बार इस तरह से सामने आते हैं। ये भी देखा गया कि लोग अपने तनाव के लिए परिस्थितियों को, लोगों को जिम्मेवार ठहराते हैं। एक सर्वे किया गया और पूछा गया, जैसे हमने आपसे पूछा तनाव का कारण क्या है, तो 80% लोगों ने कहा कि दूसरों के कारण उन्हें तनाव होता है। एक सास थी, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, तो उसको पूछा गया आपको क्यों ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्या जवाब दिया होगा, मेरी बहू के कारण, मैं जैसा चाहती हूँ नहीं करती है और ही मेरा सामना करती है, इसीलिए मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और जब बहू को पूछा गया, उसको सिर दर्द रहता था, तो उसने कहा मेरी सास के कारण, क्योंकि मेरे हर काम में गलती निकालती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे सिर दर्द हो जाता है। ऐसे ही वर्क प्लेस पर पूछा गया कर्मचारियों से, मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट ने कहा कि वर्कर्स के कारण हमें तनाव होता है, काम करना नहीं चाहते लेकिन उनकी मांगे बहुत ज्यादा होती हैं, और अगर मांगे पूरी नहीं करेंगे तो वो यूनियन बनाते हैं, हड़ताल करते हैं। सचमुच लोगों से काम कराना बहुत मुश्किल है। और जब वर्कर्स को पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, मैनेजमेंट के कारण, मैनेजमेंट काम तो बहुत लेती है लेकिन जो सुविधाएं वेतन हमें देना चाहिए वो नहीं मिलता है। माता पिता को पूछा तो बच्चों के कारण, और बच्चों को पूछेंगे तो माता पिता के कारण। तो हर एक की उंगली किसकी ओर है? अगर हम एक उंगली दूसरे की ओर करते हैं तो तीन उंगली हमारी ओर होती है। इसका मतलब अगर एक कमी सामने वाले में है तो पहले तीन कमी किसमें है? तो किसको बदलना चाहिए पहले? लेकिन हम सोचते मैं बिल्कुल सही हूं, मैं जो सोच रही हूं, मैं जो कर रही हूं वो सही है, दूसरे को बदल जाना चाहिए। और वो समझते हैं हम सही हैं, इसलिए वो ना वो बदलते हैं ना हम बदलते हैं और हमारी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। लेकिन आध्यात्मिकता में हम सीखते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम बदलेंगे तो ही दूसरों को परिवर्तन करने की हम प्रेरणा दे सकते हैं, और यही आप यहाँ सीख रहे हैं। एक बार एक पति पत्नी ट्रांसफर होकर के दूसरे शहर में गए, तो वहां उन्होंने एक अपार्टमेंट में फ्लैट लिया। तो आप जानते हैं आजकल अपार्टमेंट्स ऐसे बने हुए होते हैं कि आमने सामने उनकी बालकनी खुलती है या होती है। तो ऐसे ही जिस फ्लैट में वो रह रहे थे उनके सामने वाले फ्लैट की जो बालकनी थी वो बिल्कुल इसी तरह की थी। तो एक दिन वो अपनी बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे तो देखा कि वो सामने वाले फ्लैट की महिला कपड़े सुखा रही है, और ये बहन को कमेंट करने की आदत थी। तो उसने जैसे ही वो कपड़े देखे तो उसने अपने पति को कहा कि देखो कैसे कपड़े धोए हैं, कपड़े साफ नहीं धुले हैं, या जो भी उस समय उसको लगा उसने कहा। तो पति ने चुपचाप सुना, उन्होंने कुछ कहा नहीं। दूसरे दिन भी जब वो चाय पी रहे थे तो वो फिर से अपने कपड़े सुखा रही थी, शायद उसके कपड़े धोने का टाइम होता था। तो आज भी उसको लगा कि कपड़े साफ नहीं धुले हैं, तो उसने कहा लगता है इसके पास अच्छी क्वालिटी का सर्फ नहीं है, साबुन नहीं है। पति ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सुन लिया। अब तीसरे दिन भी जब वो चाय पी रहे थे, वो कपड़े सुखाने आई, तो उसने आज तो बहुत खुश होकर के कहा आज तो इसने बहुत साफ कपड़े धोए हैं, लगता है इसने अपना सर्फ चेंज कर लिया है। तो पति ने कहा नहीं, आज मैंने बालकनी का शीशा साफ कर दिया है। अब कमी कहाँ थी और दिखाई कहाँ दे रही है? हम भी अपने जीवन में ऐसे ही करते हैं, अपनी कमी हम नहीं देख पाते लेकिन दूसरों की कमी हम ज्यादा देखते रहते हैं। लेकिन पहले हमें अपनी कमी देखनी होती है तभी हम परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसे ही कई बार हम सोचते हैं कि हम दिन भर बहुत कार्य करते हैं, जैसे अभी आपने शेयर किया 14-14 घंटे हमें काम करना पड़ता है, डेडलाइंस होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके कारण हमें तनाव होता है। लेकिन वास्तव में व्यक्ति को कार्य से तनाव नहीं होता है, जिस भावना से हम काम करते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर मुझे अपना काम पसंद है और हम दिल से करते हैं, उसे प्रेम से करते हैं, वही काम हमें खुशी देता है। लेकिन अगर मुझे काम पसंद नहीं है और मुझे करना पड़ता है या मजबूरी से हम उसे करते हैं तो वो थोड़ा भी काम हमें तनाव देता है। लेकिन यदि बहुत अधिक कार्य है तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट अर्जेंट काम है वो हम पहले कर लें, लेस इम्पॉर्टेंट है उसे हम बाद में ले सकते हैं, लीस्ट इम्पॉर्टेंट है उसे हम पोस्टपोन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कंपनियां जो हमें डेडलाइंस देती हैं उसका कारण होता है कि वो चाहते हैं तय समय सीमा में कार्य पूरा हो ताकि कंपनी को प्रॉफिट हो। अगर वो समय सीमा में पूरा नहीं होगा तो कंपनी को लॉस हो सकता है और कोई भी कंपनी चाहती नहीं है कि हमें लॉस हो। उसके कारण जो थोड़ा बहुत प्रेशर आता है वो वास्तव में हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाने वाला होता है। एक बार ऐसे ही एक बिजनेसमैन थे और उनका कोई वारिस नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि मुझे सही समय पर अपने वारिस की तलाश कर लेनी चाहिए। तो उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि जो भी मेरे घर के बाहर जो स्विमिंग पूल बना हुआ है उसे एक कोने से दूसरे कोने तक पार कर लेगा वो मेरे बिजनेस का पार्टनर होगा और उसे 5 लाख इनाम भी दिया जाएगा। तो बहुत साधारण सी शर्त थी, बहुत सारे युवक बहुत लोग आ गए तो देखा कि वो स्विमिंग पूल कोई ऑर्डिनरी पूल नहीं है, उसमें तो बहुत सांप हैं। तो जैसे ही लोगों ने देखा कि सांप हैं, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस पूल में एक कोने से दूसरे कोने तक जाए, पर इतने में ही एक कोने से एक युवक कूदा और बहुत मुश्किल से सांपों से अपने आप को बचाते हुए किसी तरह से वो दूसरे कोने पर बाहर आ गया। और वहीं बिजनेसमैन खड़े थे, उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई, कहा बेटा सचमुच तुम बहुत साहसी हो और मुझे अपनी कंपनी के लिए एक ऐसे ही पार्टनर की जरूरत थी, तो मेरे शर्त के मुताबिक तुम मेरे पार्टनर रहोगे और तुम्हें 5 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। तो उसने कहा ना तो मुझे आपका इनाम चाहिए ना पार्टनरशिप चाहिए, पहले मुझे उसको ढूंढने दो जिसने मुझे इस पूल में धक्का दिया है। अब देखिए उसको ऐसा लग रहा था कि मैं सांपों वाले पूल को पार नहीं कर सकता, लेकिन उस धक्के ने क्या कर दिया, उससे वो कार्य करा लिया जो वो समझ रहा था मैं नहीं कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर हम चैलेंज लेते हैं तो हमारी वो क्षमता बढ़ जाती है। अपने तनाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में हम मनोरंजन के साधन अपनाते हैं। ज्यादातर हम पार्टीज में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, बाहर रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं, सिनेमा देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, दोस्तों के बीच में जाकर के अपने मन की बात कहने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग दूसरे तरीके अपनाते हैं, व्यसन लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, हर एक का अपना अपना तरीका है। लेकिन जब तक हम मनोरंजन कर रहे होते हैं थोड़े समय के लिए हमारा तनाव समाप्त हो जाता है, हमें लगता है हम बिल्कुल रिलैक्स हैं। लेकिन जैसे ही मनोरंजन समाप्त होता है और वो समस्या फिर से हमारे सामने होती है, फिर तनाव महसूस करने लगते हैं। इसका मतलब हमने अपने तनाव को सिर्फ पोस्टपोन कर लिया। दीज आर नॉट द रियल रेमेडीज फॉर स्ट्रेस। हमें ये समझना होगा कि तनाव का मूल कारण क्या है, तभी हम अपने तनाव को सही अर्थों में दूर कर पाएंगे। तो तनाव का मूल कारण हमारे सोचने के तरीके में है। किसी भी परिस्थिति में, विशेषकर जो तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थिति आती है, उसमें ज्यादातर हम नेगेटिव सोच लेते हैं, हम बुरा सोचते हैं, उसमें क्या हानि हो जाएगी उसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। लेकिन हमेशा हमारा बुरा नहीं होता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारा भला भी होता है, कुछ ना कुछ हमारा लाभ भी होता है, लेकिन वो पॉजिटिव हम नहीं सोच पाते हैं। और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। यदि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ तो मेरी फीलिंग्स क्या होंगी, पैनिक, फियर एंड वरी। हमें चिंता होगी, भय होगा, तनाव होगा, वैसा ही मेरा व्यवहार भी होगा। मानो आपका बच्चा है, घर से बाहर जाता है, रोज 6-7 बजे तक वो घर आ जाता है, चाहे वो ट्यूशन पढ़ने जाता है या खेलने जाता है, जो भी, लेकिन वो 7 बजे तक घर आ जाता है। लेकिन आज 8 बज गए, 8 के भी ऊपर टाइम हो गया, बच्चा घर नहीं लौटा, तो हम नेगेटिव सोचेंगे या पॉजिटिव? हमेशा मन में कोई ऐसा विचार आएगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं हाँ आज का जमाना ऐसा है, कहीं किडनैप तो नहीं हो गया, यानी जब नेगेटिव हम सोचने लगते हैं तो एक के बाद वो विचार हमारे मन में प्रेशर बनाते जाते हैं और मानो आप कोशिश करते हैं उसको संपर्क करने की लेकिन संपर्क नहीं हो पाया, एक घंटा और बीत गया और एक घंटे के बाद वो घर लौटता है। 99.9% में कुछ नहीं होता है लेकिन 0.1% अगर कभी कुछ होता भी है तो भी अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम ज्यादा बेहतर समाधान कर पाएंगे। लेकिन जब वो घर लौटता है अब मेरे मन की स्थिति कैसी है, इतना प्रेशर है हमारे अंदर कि हम उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। हो सकता है कि कोई जेन्युइन रीजन बना कि वो समय पर घर नहीं आ सका, लेकिन हम अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं कि आजकल के बच्चे कैसे हैं, उनको माता पिता के साथ कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, और वो बच्चा समझता है कि मेरे माता पिता मुझे नहीं समझ सकते और वहीं से संबंधों में दूरी होने लगती है, आप पर से उसका विश्वास हटने लगता है। लेकिन यदि हम पॉजिटिव सोचते, हमारे एक पड़ोसी का बच्चा है वो रोज रात को 10 बजे आता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पता है कि वो 10 बजे ही आता है, वो कुछ नहीं सोचते तो कोई स्ट्रेस नहीं होता है। आप ऑफिस में काम करते हैं, दो लोगों से एक जैसी गलती हो जाती है, बॉस बुलाते हैं और एक को कहते हैं तो वो तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और माफी मांगता है और कहता है आगे से आपको ऐसा अवसर मैं नहीं दूंगा। बॉस अधिकारी भी संतुष्ट होते हैं और बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन जब दूसरे को बुलाते हैं तो वो अपनी गलती नहीं मानता है और वो उसे सिद्ध करने लगता है, उसने ऐसा किया इसीलिए ऐसा हुआ, आप हमेशा मुझे ही ऐसा कहते हैं। दोनों के बीच में नाराजगी होती है, बात बढ़ती है और तब तक उसका तनाव बना रहता है जब तक कि फिर से संबंध सामान्य नहीं होते। अब परिस्थिति एक जैसी है दोनों के सामने लेकिन दोनों के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग अलग और इसीलिए उसका प्रभाव भी अलग अलग। आप ट्रैफिक में जाते हैं, बहुत ट्रैफिक में किसी ने आपकी गाड़ी को लगा दिया, तो आप देखते हैं कि बहुत ट्रैफिक है और मुझे ही ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए, आप बिना कुछ रिएक्ट किए निकल जाते हैं। एक दूसरा व्यक्ति है जरा सा लगाया इतना गुस्से में आ जाता है कि वो गाड़ी से बाहर निकल के मारपीट करने को तैयार। परिस्थिति एक जैसी है लेकिन दोनों व्यक्तियों के सोचने का तरीका अलग अलग। तो पूरे दिन भर में छोटी छोटी घटनाएं हमारे साथ होती हैं और हम नेगेटिव होते हैं तो तनाव में आ जाते हैं और उन्हीं परिस्थितियों में यदि हम पॉजिटिव होते हैं तो हम सहज ही उस परिस्थिति को पार कर जाते हैं, उसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। लेकिन जो मन की सोच को सकारात्मक बनाना है, उसे सही दिशा देना है, वो शायद इतना आसान नहीं होता है जितना कहना आसान है। जैसे मैं अपने इस हाथ को ऊपर करना चाहूं नीचे करना चाहूं, ये बहुत सहज है क्योंकि ये स्थूल है, लेकिन मेरे मन में मुझे यही विचार लाने हैं, दूसरे विचार नहीं लाने हैं, इसके लिए मुझे मन को अभ्यास देना पड़ता है। मन सूक्ष्म है, मन की गति बहुत तेज है और उसके लिए हमें जो अभ्यास करना होता है वो है मेडिटेशन करना, प्रतिदिन हम ध्यान करें। तो आप यहाँ राजयोग मेडिटेशन सीख रहे हैं, आने वाले 2 दिनों में और भी विस्तार से आप मेडिटेशन समझेंगे अभ्यास करेंगे। तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तब हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं। हमने तनाव की परिभाषा में देखा, तनाव हमें तब होता है जब प्रेशर्स ज्यादा हैं और कोपिंग एबिलिटी कम है। तो या तो हम प्रेशर्स कम कर लें तो हमारा तनाव कम हो जाएगा। तो क्या हम प्रेशर्स कम कर सकते हैं? हमारे जीवन में समस्याएं ही ना आए ऐसा हो सकता है? हो सकता है, हाँ, जीवन सुख से बीत रही है, पता नहीं अचानक कहाँ से कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और हमें उसका सामना करना ही पड़ता है। तो हम अपनी सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, धैर्य, आत्मविश्वास, कंट्रोल करने की शक्ति है, हम बढ़ा सकते हैं। जो भीतरी शक्तियां हैं हमें बाहर से नहीं मिलती हैं, इसके लिए हमें कुछ भीतरी प्रयास करने होंगे और मेडिटेशन वो प्रयास है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो दो स्टेप हैं, एक है आत्मचिंतन, हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, अपने आप को हम देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है मेरी कमी कहाँ है और कहाँ मुझे परिवर्तन लाने की जरूरत है, या मेरी समस्या कैसी है और इस समस्या के अनुसार क्या समाधान हो सकता है। और दूसरा चरण है परमात्मा से संबंध का अनुभव करना। तो जब हम ईश्वर से संबंध का अनुभव करते हैं, वो सर्वशक्तिवान है, शांति के सागर हैं, उससे मन को शांति मिलती है, शक्ति मिलती है, हमारा मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, परिस्थिति छोटी लगती है और हम उसे सहज पार कर लेते हैं। इसीलिए हम देखते हैं जितने भी आध्यात्मिक व्यक्ति हुए हैं इस दुनिया में, संसार की बड़ी बड़ी कठिनाइयां भी उन्होंने हंसते हंसते पार की। कहते हैं ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया, फिर भी वो बहुत सहज भाव से उन्होंने कहा हे पिता तू इन्हें क्षमा करना। सुकरात को जहर पिला दिया, लेकिन बहुत सहज भाव से उन्होंने जीवन में मृत्यु को भी स्वीकार किया। तो इतनी शक्ति कि जो भय उत्पन्न करने वाले, जीवन में सबसे ज्यादा भय मनुष्य को मृत्यु का होता है, उसे भी इतना सहज रीति से उन्होंने अपनाया अपने जीवन में। आप इनका मिसाल आता है महाभारत में, अनेक ऐसे प्रसंग है, हम नेक्स्ट सेशन में आपसे उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अनेक साइंटिफिक स्टडीज में ये देखा गया कि जब हम योग अभ्यास करते हैं तो योग अभ्यास से हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स बनते हैं जो तनाव में उत्पन्न केमिकल्स के विपरीत होते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो जो केमिकल्स बनते हैं वो हार्ट रेट बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, लेकिन योग के दौरान जो केमिकल्स बनते हैं वो एंडोर्फिन्स, एनकेफलिन्स, सेरोटोनिन्स हैं, जो हमारी हार्ट रेट को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन को कम करते हैं, पूरा सिस्टम एक संतुलन में कार्य करने लगता है और हम स्वस्थ होते हैं। तो हम सब जानते हैं आज योग लोकप्रिय इसलिए हो रहा है क्योंकि योग से हम स्वस्थ होते हैं, और यही कारण है कि पूरे विश्व ने योग दिवस को स्वीकार किया कि ये हमें मन से भी स्वस्थ बनाता है और तन से भी स्वस्थ बनाता है। अब चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन है, पारिवारिक जीवन है या हमारी पर्सनल लाइफ है, उसमें तीन बातें हमारे सामने आती हैं, रोल्स, रूटीन्स एंड रिलेशनशिप। हम सभी कोई ना कोई कार्य करते हैं और जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। मानो आप ऑफिसर हैं, ऑफिस में काम करते हैं, 8 घंटा आपको लोगों से काम कराना होता है तो आप ऑफिशियल बने रहते हैं, गंभीर रहते हैं। अब 8 घंटे के बाद आप घर लौटते हैं, लेकिन घर में तो ऑफिसर नहीं है, घर में रोल चेंज हो गया, घर में आप पिता हैं, पति हैं, पुत्र हैं, जो भी मित्र हैं, जिसके भी संबंध में आप आ रहे हैं, लेकिन वो 8 घंटे के प्रभाव से हम मुक्त नहीं हो पाते। और कई बार घर में भी हम वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम ऑफिस में कर रहे होते हैं, और घर वालों को तो हमसे स्नेह चाहिए, अपनापन चाहिए, और जब हम उनको वो नहीं दे पाते हैं तो संबंधों में तनाव पैदा होने लगता है। ऐसे ही मानो आप अफसर नहीं हैं, आप वर्कर हैं, काम करते हैं, और आपको कुछ कहा जाता है तो आपको सुनना भी पड़ता है, कई बार गुस्सा आता है लेकिन चुप रह जाना पड़ता है, उस गुस्से को पी लेते हैं, घर में आते हैं, पत्नी, बच्चे, माँ, जो भी सामने आता है उनके ऊपर तो गुस्सा निकाल सकते हैं, तो ऑफिस का गुस्सा कहाँ निकालते हैं, घर में आकर के निकालते हैं। तो यहाँ भी अपने रोल से हम अपने आप को डिटैच नहीं कर पाए। जहाँ मेरा जैसा रोल है वैसा रोल हम प्ले नहीं कर पाते हैं, और यही कारण है कि कई बार उसके कारण ना तो हम ऑफिस में सही तरह से कार्य कर पाते हैं और ना ही घर में भी हम रिलैक्स हो पाते हैं। अध्यात्म हमें ये सिखाता है कि आई एम नॉट दिस रोल। आपने समझा आज आत्मा का लेसन आपने सुना, हम जो कर रहे हैं वो हम नहीं हैं। मैं एक आत्मा हूं और आत्मा को ये शरीर मिला हुआ है कार्य करने के लिए। तो हम जब अपने कार्य से अपने आप को न्यारा करते हैं तब हमारा जहां जैसा रोल है वैसा रोल हम प्ले कर पाते हैं। एक बार एक स्थान पर रामलीला चल रही थी और वहां हनुमान का रोल प्ले करने वाला पहुंचा नहीं था। तो मैनेजर ने देखा कि बहुत पब्लिक आ चुकी है और मुझे रामलीला शुरू करवा देनी चाहिए, तो उसने एक वर्कर को बुलाया और कहा कि देखो तुम हनुमान का ड्रेस पहन करके स्टेज पर आ जाना, रावण की दरबार लगी हुई होगी और वो रावण तुमसे एक सवाल पूछेगा, तुम कौन? तो तुम कहना मैं श्री राम भक्त हनुमान। हाँ, तुमको ये सीन करना है, फिर बाकी तो हम संभाल लेंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो हनुमान का ड्रेस पहन करके स्टेज पर आया। अब उसने पहले कभी एक्टिंग की नहीं थी, तो जैसे ही उसने पब्लिक को देखा और ऊपर से रावण ने बहुत जोर से, क्योंकि उसका तो रोल ही होता है वो जोर से दहाड़ के बोलता है, उसने बहुत जोर से उसको पूछा तुम कौन? बेचारा घबरा गया। उसने कहा मैं रामलाल रिक्शा वाला। यहाँ भी ऐसा होता है कि जब हम टेंशन में होते हैं तो अपने रोल हम सही तरीके से प्ले नहीं कर पाते हैं। और दूसरा है हमारी दिनचर्या, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक हम कार्य करते हैं। अगर हमारी दिनचर्या व्यवस्थित है तो हमें तनाव कम होता है, लेकिन वर्तमान जीवन शैली में हम सारा दिन व्यस्त रहते हैं, शाम को घर लौटते हैं तो क्या करते हैं? रिलैक्स होने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं बोलिए? चाय पीते हैं और टीवी देखते हैं, यही करते हैं, टीवी के सामने बैठकर चाय पीते हैं। अब मानो आप न्यूज देखते हैं टेलीविजन के सामने, तो क्या वो न्यूज सुनने से आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं? बल्कि आज दुनिया की सबसे बुरी खबरें टीवी की सबसे अच्छी खबरें होती हैं और वो सुन सुन करके और टेंशन बढ़ता है। या आप कोई स्पोर्ट्स देख रहे हैं, गेम्स देख रहे हैं, आपकी मनपसंद टीम जीत रही है तो आप खुश हैं, और अगर हार रही है तो उसके साथ साथ ही आपका भी ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होता रहता है। बहनें सीरियल देखती हैं, तो क्या जो सीरियल आप देखते हैं वो आपको स्वस्थ मनोरंजन देते हैं? हाँ, या सीरियल देखने के बाद, क्योंकि देर रात तक टीवी के सामने बैठे होते हैं और देर से सोते हैं, उसका प्रभाव हमारे मन पर होता है। और फिर सवेरे उठते भी हैं देर से, कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, लेट टू बेड लेट टू राइज, परिणाम क्या होता है? हरी वरी एंड करी। आपकी दिनचर्या शुरू होती है, जल्दबाजी में आपको समय पर सारे काम पूरे करने हैं, तो जो सामने आता है उस पर गुस्सा निकालते हैं। दिन ही तनाव से शुरू होता है और फिर उस तनाव को दूर करने के लिए चाय कॉफी सिगरेट, फिर वो सारा दिन हम लेते रहते हैं, समय पर अपना काम पूरा नहीं करते, या बहुत अधिक काम होता है तो एक साथ कई काम शुरू कर देते हैं, एक भी काम सही तरीके से हम पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे हमारी दिनचर्या चलती है, यानी अव्यवस्थित चलती है। एक बार एक ठेले वाला था, वो फ्रूट बेचता था, तो एक ग्राहक उसके पास आया और उसने देखा कि ये ऊंग रहा है, तो उसने उसको कहा कि तुम फल बेच रहे हो या सुस्ती कर रहे हो? तो उसने कहा तुमको क्या है? तो उसने कहा देखो तुम अच्छा बिजनेस करोगे तो अच्छा कमाओगे, फिर तुमको ये ठेला नहीं लगाना पड़ेगा। तो उसने कहा अच्छा क्या होगा फिर? उसने कहा तुम अपनी अच्छी दुकान बना लोगे। उसने कहा फिर उससे क्या होगा? उसने कहा और अच्छा कमाओगे, तुम अपने लिए घर भी बना लोगे। उसने कहा अच्छा फिर उससे क्या होगा? उसने कहा तुम अपना घर बनाओगे तो सुख चैन की नींद सोओगे। उसने कहा वो तो मैं अभी भी सो रहा हूं। हाँ, तो कई बार लोग सोचते हैं कि जितना हो जाता है हम उतना कर लेते हैं, बाकी तो हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं। तो स्ट्रेस फ्री होने का ये मतलब नहीं है। स्ट्रेस फ्री होने का मतलब है कि हम एक्यूरेट, एक्टिव, अलर्ट रहें, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना कार्य करें, उसमें सफल हों। और वो तब होगा जब हमारी दिनचर्या व्यवस्थित चलती है, समय से सोना, समय से उठना, समय से कार्य करना, समय से भोजन करना। आपसी संबंध, हम सभी संबंधों में रहते हैं और संबंधों में कई ऐसी बातें आती हैं। वैसे तो कहते हैं संबंध हमारे तनाव को कम करते हैं, क्योंकि संबंधों में हम अपना सुख दुख बांट लेते हैं, दुख बांटने से आधा हो जाता है। यहाँ तक कि कई लोग अपने घरों में पेट्स रखते हैं और वो पेट से बातें करते हैं, खासकर विदेशों में तो बहुत लोग, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पेट नहीं होगा। तो एक बार ऐसे एक स्टडी की गई, देखा कि जो अपने पेट से बातें करते हैं उनको हार्ट की बीमारी कम होती है। तो उनसे पूछा गया कि आप अपने पेट से क्यों बातें करते हैं, आपके घर में आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, उनसे बातें करिए। तो उन्होंने कहा कि ये पेट चुपचाप सुनते हैं, इनका हमें नहीं सुनना पड़ता है। अगर हम मनुष्यों से बात करते हैं तो उनका भी सुनना पड़ता है, हम सुनना नहीं चाहते, सिर्फ हम सुनाना चाहते हैं। तो देखिए, पेट से बातें करने का भी इतना सकारात्मक प्रभाव कि हार्ट की बीमारी का रेशो कम हो गया। तो ऐसे ही संबंधों में अगर हम सकारात्मक होते हैं, हमारे संबंध अच्छे हैं, मधुर हैं, तो उनसे हमें लाभ होता है। लेकिन संबंधों में कई बार नेगेटिव बातें आ जाती हैं। हम बहुत अपेक्षाएं रखते हैं आपस में एक दो से, और वो अपेक्षाएं हमारी पूरी नहीं होती हैं। पति सोचता है मेरी पत्नी को ये सब करना ही चाहिए, वो करती है तो ठीक, और कभी नहीं कर पाई तो हम नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं। मेरा बेटा है, मेरा कहना मानना ही चाहिए, माना तो ठीक और नहीं माना तो बहुत दुख होता है। किसी दूसरे के बेटे को मैंने कोई बात कही, उसने नहीं मानी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है। खासकर समीप संबंधों में हम इतनी अपेक्षाएं रखते हैं कि हम बिल्कुल समझ नहीं पाते कि वो हमसे अलग हैं। हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, विचार, भावनाएं अलग अलग होती हैं, और जरूरी नहीं है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही वो भी सोचते हैं। तो हमें उनको समझना होता है। कई बार हम उनकी मानकर चलें और कई बार वो हमारी बात समझते हैं। और जो भी हम आपसी संबंधों में रहते हैं, हमारी भावना देने की होनी चाहिए। जो गीता हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से हम अपना कर्तव्य पालन करें। एक बार एक भाई हमारे पास आए, उन्होंने कहा, बहन जी मुझे हार्ट अटैक हुआ है और उसका कारण भी मुझे पता है। बचपन में मेरे माता पिता का देहांत हो गया और मेरे भाई बहनों की परवरिश मैंने की, आज वो सब बहुत लायक हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं, और अब स्थिति ये है कि मुझे उनके सहयोग की जरूरत है, लेकिन वो मुझे सहयोग देना तो दूर, मेरा एहसान भी नहीं मानते कि मैंने उनके लिए कुछ किया, और मुझे बहुत दुख होता है। डॉक्टर कहता है सोचो मत, अगर आप सोचोगे तो आपके स्वास्थ्य पर और बुरा असर होगा, आपको दोबारा हार्ट अटैक हो सकता है। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? हम कहेंगे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कहना बहुत आसान है, लेकिन सचमुच जब वैसी ही स्थिति हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाए तो हम सोचेंगे, देखो इनका समय था, हमने इतना इनके लिए किया, इतना सहयोग दिया, आज हमारा समय आया तो हमको पूछते भी नहीं है, कितना दुखी होते हैं। तो हमेशा जो हम किसी के लिए कर सकते हैं अवश्य करें, वो हमारा श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन उसका प्रतिफल यदि हमें मिलता है तो भी ठीक, और नहीं मिलता है तो भी हम उसकी अपेक्षा न करें। ऐसे ही संबंधों में कई बार ईर्ष्या होती है, जब हम दूसरों से तुलना करते हैं, इनके पास तो बहुत कुछ है, ये बहुत समृद्ध हैं, उन्नति कर रहे हैं, हम वहीं के वहीं हैं, तो ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती है। कहते हैं चिंता चिता के समान है, तो ईर्ष्या भी अग्नि है जो मनुष्य को जलाती है, वो हमारा ही नुकसान करती है। संसार में तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो दूसरों को दुखी देखकर दुखी हो जाते हैं, दूसरे होते हैं जो दूसरों को दुखी देखकर सुखी होते हैं, और तीसरे होते हैं जो दूसरों को सुखी देखकर दुखी होते हैं। तो ईर्ष्या माना दूसरों को सुखी देख करके दुखी होना। तो ये हमें अपने आप को चेक करना है, मैं कहाँ हूँ। और यदि हमें ईर्ष्या ज्यादा होती है तो हमें अपने आप को परिवर्तन करने की जरूरत है। अगर हम उन्नति करना चाहते हैं तो हम अपनी योग्यताओं का विकास करें। यदि हम अपनी योग्यताओं को बढ़ाएंगे, गुणों को बढ़ाएंगे, तो हम भी उन्नति करने लगेंगे। लेकिन दूसरों से ईर्ष्या करने से उनका नुकसान नहीं होने वाला है, हमारा ही होने वाला है। और ऐसे ही आपसी संबंधों में जब क्रोध आता है तो वो भी बहुत बड़ा तनाव का कारण है। क्रोध में आकर के हम कई बार ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए, वो दूसरों को भी दुख पहुंचाते हैं, हमें भी अशांति पैदा करते हैं। इस विषय पर विस्तार पर हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। अंतिम तीन उपाय जो हमारे तनाव कम करने में हमें मदद कर सकते हैं, 3 A's का फॉर्मूला हम अपनाएं, एक्सेप्ट, ऑल्टर एंड अवॉइड। कई जीवन की परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं है, हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, तो उनको हम स्वीकार कर लें। मानो आपके परिवार के सदस्य हैं और उनका स्वभाव आपसे नहीं मिलता है, आप उनको समझा चुके हैं तो भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है और हमें रहना उनके साथ ही है, या कार्यस्थल के साथी हैं, उनके साथ ही काम करना है, तो फिर हम उनको स्वीकार कर लें कि ये जो हैं जैसे हैं इनको समझकर हमें चलना है, परिवर्तन नहीं करना है। क्योंकि दूसरों की लाइफ हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो हम समझकर चलेंगे तो उनके साथ रहने में, काम करने में हमें टेंशन नहीं होगा, नहीं तो उनकी हर छोटी बात हमें टेंशन पैदा करेगी। कुछ बातों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। मानो मेरा अपना स्वभाव है और मुझे पता है मुझे बहुत गुस्सा आता है, या मुझ में बहुत जल्दी ईर्ष्या हो जाती है, मेरी बहुत सेंसिटिव नेचर है, बहुत जल्दी फीलिंग आ जाती है, तो हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं हमेशा, भले उसमें थोड़ा समय लग सकता है। मानो हमने योग अभ्यास करना प्रारंभ किया तो योग अभ्यास से हमारे अंदर चेंज आने लगता है, तो हमारी समस्याएं कम होने लगेंगी। कुछ बातों को हमें जीवन में अवॉइड करना पड़ता है। आज पूरा संसार एक ग्लोबल विलेज है, संसार के दूसरे कोने में क्या हो रहा है मेरे ड्राइंग रूम में 1 मिनट में आ जाता है, और कई बार उसके कारण हमें तनाव होता है। अच्छा ऐसा हो रहा है दुनिया में, अगर दुनिया ऐसे ही चलेगी तो क्या होगा। तो यदि मुझ पर उसका प्रभाव पड़ता है तो हम देखे ही नहीं, सुने ही नहीं, और यदि हम देखते सुनते हैं तो फिर साक्षी भाव से सुने ताकि उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े। तो इस तरह से हम अपने आप को तनाव मुक्त कर सकते हैं। हर परिस्थिति में हम अपने सोचने की दिशा में परिवर्तन लाएं, और उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग का अभ्यास हमें बहुत मदद करता है, जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलता है। तो लास्ट में 2 पंक्तियों के साथ मैं समाप्त करूंगी। सोच को बदलिए तो सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलिए तो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशाएं बदलिए तो मंजिलें अपने आप मिल जाएंगी। ओम शांति।
रास्ते।